ओम शांति। 18th सितंबर 1975 अव्यक्त मुरली। माया के अनेक प्रकार के चक्करों की निशानी क्या होगी? जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होंगी और बाप के वर्षे की अधिकारी होंगी, वैसे माया के अनेक प्रकार के चक्कर में आने वाले की निशानी क्या होगी? जैसे उसके सिर पर लाइट का ताज है, वैसे उसके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा। ताज नहीं, सदैव किसी न किसी प्रकार का बोझ उसके सिर पर अर्थात बुद्धि में महसूस होगा। ऐसी आत्मा सदैव कैसी होगी? कर्जदार और मर्जदार होगी। उसके मस्तक पर मुख पर सदैव मस्तक और मुख पर सदैव क्या होगा? सदा क्वेश्चन मार्क होंगे। हर बात में क्यों, क्या, कैसे, यह क्वेश्चन होंगे। एक सेकंड भी बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं होगी। फुल स्टॉप की निशानी बिंदी होती है, अर्थात मनसा में भी बिंदी स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। वाचा और कर्मना में भी बीती सो बीती, नथिंग न्यू, जो होता है वह कल्याणकारी, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाना नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी टेढ़ी आती है। फुल स्टॉप लिखना सहज है, फुल स्टॉप लिखने से क्वेश्चन मार्क लिखना जरा मुश्किल होता है। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरों से या बाप से, यह निशानी है कि अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरे से या बाप से, यह निशानी है कि यह आत्मा कमजोर है, यह आत्मा अधीन है, यह आत्मा माया के चक्कर में है, बोझ वाली आत्मा है, यह आत्मा कर्जदार मर्जदार है, यह आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी नहीं। अव्यक्त मुरली, 18th सितंबर 1975। क्या सुना? माया के अनेक प्रकार के चक्करों की निशानी क्या होगी? जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होगी और बाप के वर्षे के अधिकारी होगी, वैसे माया के अनेक प्रकार के चक्कर में आने वाली की निशानी क्या होगी? जैसे उसके सिर पर लाइट का ताज है, वैसे उसके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों के बोझ विघ्नों का बोझ होगा। ताज नहीं, सदैव किसी न किसी प्रकार का बोझ उसके सिर पर अर्थात बुद्धि में महसूस होगा। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार होगी। उसके मस्तक पर मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। हर बात में क्या, क्यों, कैसे, यह क्वेश्चन होंगे। एक सेकंड भी बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं होगी। फुल स्टॉप की निशानी बिंदी होती है, अर्थात मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। वाचा और कर्मना में भी बीती सो बीती, नथिंग न्यू, जो होता है वह कल्याणकारी, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाना नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी टेढ़ी आती है। फुल स्टॉप लिखना सहज है, फुल स्टॉप लिखने से क्वेश्चन मार्क लिखना जरा मुश्किल होता है। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरों से या बाप से, यह निशानी है कि यह आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी है, यह आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी नहीं। 75 18 सितंबर। तो क्या सुना? माया के चक्करों में आने वाली आत्मा और दूसरी तरफ है लाइट के ताजधारी आत्मा। तो जो आत्मा माया के चक्कर में आती है वो कैसी होती है? बोझ वाली होती है। वो कैसी होती है? क्वेश्चन मार्क वाली होती है। वो कैसी होती है? बीती सो बीती न करने वाली, बिंदु स्वरूप में न टिकने वाली, और कर्जदार होगी, मर्जदार होगी, और स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होगी, और एक सेकंड भी एकाग्र न होगी। बुद्धि भटकती ही रहेगी। एकाग्र न होना ये भी माया का प्रभाव है, ये भी माया का प्रभाव है। तो सबसे पहले तो ये समझना है माया क्या है, व्हाट इज माया, माया की क्या परिभाषा है, माया किसे कहेंगे। माया की कई सारी परिभाषाएं, एक परिभाषा बताई कमजोरी, वीकनेस, इम्परफेक्शन, फ्लॉज, 7 डेफिनेशन है माया की, 7 डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ माया। तो एक परिभाषा बताई माया अर्थात कमजोरी, अर्थात वीकनेस, फ्लॉ, इम्परफेक्शन। एक दूसरा, दूसरा माया अर्थात विकार, 5 विकारों को माया कहा गया, वाइसेस। तीसरा अज्ञान, माया अर्थात अज्ञान, बहुत सी के अंदर आ गया माया, माया अर्थात क्या, बड़ा माया अर्थात सबसे पहली डेफिनेशन माया की है देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस, ये सबसे पहली परिभाषा है माया की। दूसरी परिभाषा है विकार, तीसरी परिभाषा है कमजोरी, चौथी परिभाषा है अज्ञान, पांचवी परिभाषा है इल्यूजन, इल्यूजन अर्थात भ्रम, जो है नहीं परंतु जो दिखता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है परंतु फिर भी लगता है कि वो है, इसे माया कहा जाता है। और माया अर्थात वो संसार कहता है, कामिनी कांचन को माया कहा गया है, संसार को, संसार ने कामिनी कांचन माया कहा गया है, वेमन एंड गोल्ड, स्त्री और धन, इन दोनों को माया कहा गया है। और माया अर्थात आकर्षण, मृग तृष्णा, और माया अर्थात हमारे ज्ञान के आधार से माया अर्थात पुराने संस्कार, पुराने संस्कार मध्य के हद के संस्कार, हद के संस्कार, पुराने कहने से अच्छा अच्छा शब्द है लिमिटेड संस्कार से, ये माया है। और दूसरा है आदतें, उसके अंदर एडिक्शंस, एक है आदत एक है संस्कार, इसमें भी अंतर है, कौन सा अंतर, एक बार की थी चर्चा क्या, ये हिमखंड है, ये सतह है, समुद्र का सतह, यहाँ पर हिमखंड है, उसका एक भाग ऊपर है, 9 भाग नीचे है, 1/9 नीचे होता है, एक दिखाई देता है, 1/9 जो है वो अवचेतन मन है, जो नहीं ये चेतन मन है, दोनों ही अवचेतन मन में है, हैबिट भी अवचेतन मन में है तो संस्कार भी अवचेतन मन में है, हैबिट कोई ऊपर नहीं है, चेतन में नहीं है, हैबिट्स भी नीचे है, वो भी नीचे है, पर उनमें भी अंतर है, हैबिट्स उन 1/9 में भी ऊपर है, संस्कार बहुत डेप्थ में है, संस्कार जो है डीप रूटेड हैबिट्स, ऑलरेडी हैबिट्स डीप रूटेड है, डीप रूटेड अर्थात बहुत गहराई तक गए हुए, परंतु उसमें भी हैबिट्स, जो हैबिट्स डीप रूटेड है, पर डीप रूटेड हैबिट्स संस्कार है। दूसरा, संस्कार जो है वो जरूरी नहीं है कि कर्म में आएंगे, हाँ हैबिट्स हमेशा कर्म से ज्यादा संबंध है, हैबिट्स का एक्शन से, आदतों का संबंध एक्शन से ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है ना भी हो, परंतु ज्यादा संबंध कर्म से है, संस्कारों का जरूरी नहीं कर्म से संबंध है, किसी का कोई एक सूक्ष्म संस्कार रहेगा जैसे दुखी होना, इसका कर्म में आने से ज्यादा संबंध नहीं है, परंतु हर चीज में अपने आप को सेंसिटिव बना रखा है, एक ऐसे पॉइंट पर रखा है आत्मा ने कि अगर उससे कहा जाए कि इस संसार में क्या ऐसी कोई आत्मा है जो तुम्हें दुखी नहीं कर सकती है, तो वो नहीं कह सकती है कि नहीं, हर एक को पावर दी हुई है, हर एक आत्मा उसे कुछ ना कर कुछ करके दुखी कर सकती है, हमने ये पावर दूसरों को दे दी है, यदि उसने वो किया तो हम दुखी होना ही है, ये पावर हमने दूसरों को दे दी है, क्या ऐसा कोई है कि जो कहता है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे मैं कुछ नहीं होगा, ऐसे भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु इसकी डिग्री कम ज्यादा है, किसी ने बहुत सारी पावर्स दूसरों को दे रखी है, दूसरे जब चाहे उसे दुखी कर सकते हैं, और दूसरे नहीं दुखी करने हैं, हमने खुद ही अपने आप को उस पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी, उस पॉइंट ऑफ सेंसिटिविटी में सेट किया हुआ है कि वहां रहते दूसरों से बहुत सारी अपेक्षाएं जो पूर्ण नहीं होगी और दुख होगा। तो माया अर्थात सबसे पहली परिभाषा देहभान, माया अर्थात दूसरी परिभाषा विकार, तीसरी परिभाषा माया अर्थात कमजोरी, चौथी परिभाषा माया अर्थात हद के संस्कार, पांचवी परिभाषा माया अर्थात एडिक्शंस हैबिट्स, छठवीं परिभाषा माया अर्थात इल्यूजन अर्थात भ्रम अर्थात भ्रांति अर्थात जो नहीं है वो लगना की है, रज्जू में सांप अनुभव होना जो कि है नहीं, और अंतिम परिभाषा और एक अज्ञानता, पहले नहीं हुआ अज्ञान, या फिर इसको ही कहो अनरियलिटी। माया की एक परिभाषा है अनरियलिटी, जो असत्य है। माया शब्द भिन्न भिन्न धर्मों में अलग अलग रीति से आया है, हिंदू धर्म में ही अलग अलग रीति से आया, जो पुराने वैदिक स्क्रिप्चर्स है, वेदों में भी दो भाग है, एक पुराने वैदिक और फिर उसी वेदों का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, मॉडर्न भी तभी पुराना ही। तो पहले माया को कहा गया है, इवन चार वेदों में माया का जो पहले अर्थ दिया हुआ है वो कहा है शक्ति पावर, माया अर्थात शक्ति पावर। बाद में उन्हीं वेदों में उसी माया का दूसरा अर्थ दिया हुआ है, उन्हीं वेदों ने माया को बाद में कहा कि माया अर्थात भ्रम इल्यूजन। वेद वेद में ही माया के अंतर अर्थ में अंतर है। मां अर्थात किसी ने कहा मां अर्थात मदर, वहां से वो शब्द निकला है। किसी ने कहा है मां अर्थात गिनना अर्थात मेजर करना, उसको भी माया का एक अर्थ बताया है। माया के भी बहुत सारे अलग अलग अर्थ है, हिंदू धर्म में ही कितने अर्थ है। आगे आगे चलकर जब भक्ति मार्ग चालू हुआ तो उसको भगवान की एक शक्ति कहा गया है, परमात्मा शक्ति, परमात्मा योग माया के द्वारा धरती पर अवतरित होता है, ऐसा गीता में लिखाया हुआ है। योग माया का आश्रय लेकर मैं इस धरती पर आता हूँ। इनस्क्रूटेबल पावर ऑफ द लॉर्ड, मतलब भगवान की वह शक्ति जो कि अनिर्वचनीय है, अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको अनस्पीकेबल है, जो कि समझी नहीं जा सकती, बेबूझ ऐसी अनफैडमेबल, जिसको इतनी गहराई है उसमें, वो जो पावर है भगवान की, उसे माया कहा गया है। ये माया की एक दूसरी परिभाषा, वेदों में दो, एक तो शक्ति और दूसरा भ्रम, भक्ति मार्ग में परमात्मा की शक्ति, और फिर आगे चलकर माया की पूजा होने लगी देवियों के रूप में, ये सारी माया है, उनके उसके रूप में पूजा होने लगी। एक नया मार्ग खुला, मतलब भक्ति मार्ग, दो मार्ग है, एक सन्यास का मार्ग एक भक्ति का मार्ग। सन्यास मार्ग कहता है माया अर्थात नाम और रूप, भ्रम, नेम एंड फॉर्म, वो माया है। भक्ति कहता है माया अर्थात महामाया। श्री राम सामने है, लक्ष्मण पीछे है, लक्ष्मण को राम तक पहुंचना है तो दो मार्ग है, एक तो सीता जो है उसको हटा दो ताकि राम तक पहुंचे, दूसरा मार्ग है सीता की शरण में चले जाओ। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। एक मार्ग सीता को हटा दो अर्थात संन्यास, सीता है ही नहीं, ब्रह्म है, नाम और रूप के कारण सीता भास रही है, वैसे सीता है ही नहीं, ये संन्यास मार्ग। दूसरा मार्ग भक्ति मार्ग, सीता की चरण में चले जाओ तो एक दिन सीता की कृपा हो जाएगी तो राम के दर्शन हो जाएंगे। तो सीता की भक्ति, काली की भक्ति, देवी की भक्ति, लक्ष्मी की भक्ति, दुर्गा की भक्ति, ये सारी भक्ति मार्ग है कि उनकी शरण में चले जाओ तो परमात्मा प्राप्ति होगी। शाक्त, शाक्त मार्ग है वो, एक है शिव, एक शाक्त, एक वैष्णव, एक गणपत्य, एक सूर्य, पांच देवताओं की उपासना है भारत में। तो कहां थे हम, माया, हिंदू धर्म में माया, अलग अलग धर्म में, बौद्ध धर्म में माया को माया नहीं मारा कहा गया है, महात्मा बुद्ध जब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो रहे थे, संबोधि एनलाइटनमेंट, तब उस माया ने उसको आकर बहुत सारे प्रलोभन दिए, माया को बहुत सारे प्रलोभन दिए, माया ने प्रलोभन दिए कि तुम्हारे पास राज्य है, तुम ये करो, तुम वो करो, मारा उसको कहा वहां पर। उसी तरह सांख्य शास्त्र में माया वो नहीं है, सांख्य में माया अर्थात प्रकृति और पुरुष के मिलन से यह सृष्टि है, तो वहां प्रकृति को माया कहा गया है, वो माया का एक अलग इंटरप्रिटेशन। तो माया वहां पर दूसरी है। भिन्न भिन्न धर्मों में क्रिश्चियनिटी में सैटन कहा हुआ है, मतलब शैतान, माया। तो माया के बहुत सारे अर्थ है। बाबा ने जो अर्थ बताया है वो एकदम दूसरा है। बाबा ने कहा ये जो विकार है, ये देहवान है, ये माया है। किसी ने सांख्य में प्रकृति को माया कहा, तो भगवान की शक्ति को माया कहा, तो अलग अलग जैसे बताया, नाम और रूप को माया कहा, पर भगवान ने एकदम दूसरा ही अर्थ बताया है। तीन शब्द है, एक है माया, दूसरा है मिथ्या और तीसरा है मूढ़ता। ऐसे तीन अलग अलग शब्द आते हैं। एक है माया, माया अर्थात जो है नहीं वो दिख रहा है। दूसरा है मिथ्या, मतलब असत्य, माया महाठगनी हम जानी, कबीर ने कहा है ना, मतलब ये बहुत सुंदर लिखा हुआ है, वो लिखता है माया महाठगनी हम जानी, निर्गुण फास लिए डोले, बोले मधुर बानी। माया महाठगनी हम जानी, उसने क्या किया, जो निर्गुण ब्रह्म है मतलब परमात्मा जो है उसको फांसा है, निर्गुण ब्रह्म फांस लिए डोल रही है और डोल रही है। माया ऐसी महाठगनी है कि जिसने उस निर्गुण को फांसा है और डोल रही है, और क्या कह रही है, बोले मधुर बानी, मधुर मधुर बानी बोलती है, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। केशव के पास कमला होकर बैठी है, शिव के भवन भवानी, पंडा की मूरत हुई बैठी, पंडा जो है उसके तीर्थों में मूरत होकर बैठी है, तीरथ हुई में पानी, जोगी के जोगन हुई बैठी, राजा के घर रानी, राजा के घर में रानी होकर बैठी है, जोगी के जोगन हुई बैठी, काहू के हीरा हुई बैठी, किसी के घर में हीरा बन के बैठी है, काहू के कौड़ी कानी, कौड़ी होकर किसी के घर बैठी है, गरीब को भी माया है, भगत के भक्ति हुई बैठी, भगत के लिए भक्ति होकर माया बैठी है, ब्रह्म के ब्रह्मपनी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अथक कहानी। यह कहानी अथक है, क्या सुनाऊं अब तुमको, सब जगह माया ही माया है, सारा साम्राज्य माया का है, जहां देखो माया ही माया है, जहां पर देखता हूं माया, ऐसा कोई भी नहीं है जो माया से छूटा है। जो गृहस्थी है उसके लिए धन माया है, जो सन्यासी है उसको इस बात की माया है कि मैंने त्याग दिया है, वो त्यागने की माया है उसको, छोड़ने की माया है उसको, मैंने छोड़ा यही माया है, चेले की माया, गृह आश्रम की माया, हर चीज की माया। कौन है संसार में जो माया रहित है, चारों ओर माया ही माया, माया महाठगनी हम जानी, इसलिए माया जो है महाठगनी है। इस माया में फंसकर ब्रह्म जो है वो रोता है, ऐसा रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि माया में फंसकर ब्रह्म जो है, ब्रह्म मतलब संसार भक्ति ब्रह्म कहा जाता है उधर, तो ब्रह्म रो रहा है इस माया में फंसकर। तो माया अनअंडरस्टैंडेबल, इनस्क्रूटेबल, अनफैदमेबल, जो समझ से परे है उसको माया कहा गया है। तो माया की इतनी सारी परिभाषा है। तो तीन शब्द हम कह रहे थे, पहला माया, दूसरा मिथ्या जो है ही नहीं, और तीसरा है मूढ़ता। एक है मूर्खता, एक है मूढ़ता, उसमें भी अंतर है। मूढ़ भज गोविंदम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, शंकराचार्य का है ना पूरा बड़ा की बड़ा, गोविंदम भज मूढ़ मते, हे मूढ़ मते, हे मूढ़ मत, हे मूढ़ मते, गोविंद का भज क्या कर रहा है। एक है मूर्ख, मूर्ख अर्थात जो बेचारा मूर्ख है, मूढ़ अर्थात जो है मूर्ख पर समझता है मैं ज्ञानी हूं, वो है मूढ़। तो भज गोविंदम मूढ़ मते अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्तेवम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भ्रम में है सारा संसार, पता ही नहीं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो सारा फोकस जो सन्यास मार्ग में है, भक्ति मार्ग में है, बाकी धर्म में है, इस तरह से है। कई कईयों में दो विभाजित कर दिए, शैतान अर्थात जिसको हम कई इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव कहा है इसको, इंग यांग चीन में किसी ने, एक एक तरफ गॉड एक तरफ वो सैटन, किसी ने एक तरफ फरिश्ते एक तरफ शैतान, ऐसे अलग अलग धर्मों में, हर धर्मों में दो पावर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दो खड़े हैं हर जगह पर। तो यहां बाबा कह रहे हैं क्या क्या सुना, जो माया की चक्री में है उनको ये सारी उनकी निशानी है, जो वो नहीं देख पा रहे जो चीज जैसी वास्तव में है, इसके लिए भ्रम में है, इसके लिए कर्जदार है, इसके लिए मर्जदार है, इसके लिए बोझ में है, इसके लिए एक सेकंड भी एकाग्र नहीं है, क्योंकि बुद्धि भटक रही है, क्योंकि भ्रमित है, क्योंकि समझ नहीं पा रहे है क्या दिख रहा है। सब कुछ ठीक है परंतु कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे एक एरोप्लेन आसमान से जा रहा है और वहां पे फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती रहती है ना, बादल कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये सब ठीक है, अभी हम इतना दूर है, अभी हम उतना दूर है, तो वहां पर वो अनाउंसमेंट होती है फ्लाइट में कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मौसम एकदम क्लियर है, मौसम क्लियर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, इंजन अच्छा है हमारे पास, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एरोप्लेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल छोटी सी एक बात है कि धरती से हम कनेक्शन हमारा टूट चुका है और हम कहां जा रहे हैं और हमें कहां पहुंचना है यही हमको पता नहीं, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। बाकी फ्लाइट की जो स्पीड है एकदम अच्छी है, स्पीड जो चल रही है एकदम अच्छी स्पीड से चालू है फ्लाइट, परंतु हम धरती से कनेक्शन टूट गया है, इसके वजह से कहां हम हैं अभी और कहां जा रहे ये हमें पता नहीं, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो न पता होना कहां है यह भी भ्रम है, यह भी माया है, माया की चक्री। इस माया की चक्री से क्या करना है, बाहर निकलना है, उसके लिए क्या चाहिए, ज्ञान। माया अर्थात अज्ञान, अंधकार। अंधकार को दूर करने के लिए अशोक भाई क्या चाहिए, एक शिष्य अपने गुरु के पास आके पूछता है कि माया क्या है, एक शिष्य अपने गुरु के पास आकर पूछता है कि माया है क्या, वो कहता है माया तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम एक काम करो, ये थोड़ा सा पैसे लो और थोड़ा सा सामान लेकर आ जाओ मार्केट से। तो वो सामान लेने मार्केट जाता है और मार्केट जाता है तो थोड़ा सा सामान भी लेता है और थोड़ी उसको भिक्षा भी लेनी होती है। तो वो दरवाजा खोलता है तो एक स्त्री दरवाजा खोलती है, तो उसको देखकर उसको लगता है कि क्या पड़ा है गुरु के पास, इतने साल से तपस्या कर रहा हूं कुछ तो मिल नहीं रहा है, क्यों ना कुछ थोड़ा अपने ट्राई करके देखूं कुछ होता है क्या अपना भी। तो वो पूछता है उसके पिताजी है क्या, तो पिताजी तो वहीं रहते हैं। तो वो कहता है कि मैं तो एकदम जवान हूं और आप चाहो तो आपकी बेटी है तो मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। वो तो एकदम खुश हो जाते हैं उसके पिताजी, क्यों नहीं एकदम शादी कर लो तुम। तो वो उसके साथ, इसका ये भूल गया गुरु कहां है, वो तो चला गया। फिर वो उसके साथ शादी कर लेता है और शादी एकदम खुशी हो जाती है और दोनों भी बहुत खुशी खुशी से रहते हैं। फिर दो बच्चे भी होते हैं, फिर वो नौकरी भी करता है, फिर खेती और वो सब कुछ बड़ा विस्तार हो जाता है। और एक दिन अचानक गांव में, कई साल गुजर जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं थोड़े, दो बच्चे, एक दिन गांव में भीषण बाढ़ आ जाती है, सारा कुछ बहने लगता है, वो घर भी बहने लगता है, सब कुछ बहने लगता है। तो वो देखता है उसकी पत्नी भी बह रही है, तो उसकी पत्नी को, पर उसके हाथ में दो बच्चे हैं, अब दो बच्चे को बचाए कि पत्नी को बचाए, तो सोचता है पत्नी को बचाना चाहिए, तो पत्नी को बचाने के लिए एक बच्चे को छोड़ता है, तो तब तक पत्नी बह जाती है, और जिसको बच्चे को छोड़ता है बच्चा बह जाता है, अब एक ही बच्चा रहता है, तो उसको बड़ी मुश्किल से बचाते बचाते आता है, तो वो बच्चा भी बह जाता है, और फिर खुद को बचाते बचाते बहुत मुश्किल से तैरते तैरते कहीं और जाके गिरता है, और फिर एकदम से उसकी होश पे जाता है, आंख खुलती है तो गुरुजी सामने खड़े रहते हैं। वो कहता, गुरुजी कहते क्या हुआ, मैंने तुमको भेजा था मार्केट से सामान लाने, उसका क्या हुआ? ये सब एक सेकंड में सब कुछ हो गया। प्रश्न क्या था उसका, माया क्या है? वो कहते यही माया है बस, जो कुछ हो गया एक सेकंड में खेल हो गया सारा। उसको लगता है कितने वर्ष गुजर गए, जो है ही नहीं वो भासता है, जो है ही नहीं वो लगना ये सत्य है। इसके लिए संसार में वेदांतवादियों ने कहा ये संसार मिथ्या है, परंतु भगवान ने क्या कहा है कि ये संसार है सत्य परंतु रहेगा नहीं। परंतु ये रहेगा नहीं, परंतु एक साकार मुरली अब तक आई है, शायद एक ही मुरली हमने सुनी है इतने सालों में, एक ही, जिसमें बाबा ने कहा यह संसार स्वप्न है, एक ही बार कहा है आज तक, किसी मुरली में नहीं कहा है कि यह संसार, क्योंकि ये भाषा सन्यासियों की है कि यह संसार स्वप्न है, यह संसार मिथ्या है, यह संसार असत्य है, यह संसार है ही नहीं, बना ही नहीं है, परंतु एक मुरली में बाबा ने स्वप्नव्रत कहा है इस संसार को, और वो कई अर्थों से स्वप्नव्रत भी है। यहां सब कुछ स्वप्न जैसा है, जो है स्वप्न है, सत्य कुछ भी नहीं है, जो भास रहा है कि है परंतु बाद में पता चलता है ये है ही नहीं। कोई लगता है हमको अपना है, ये मेरा है, एक दिन पता चलता है वो मेरा है ही नहीं, वो तो भ्रम था। जैसे दिखाया एक राजा है, उसका बच्चा मर रहा है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, सारी रानियां बैठी है और सारे रो रहे, सारा राजमहल रो रहा है, सारा इलाज कर लिया कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, और बच्चा मरने ही वाला है। राजा 3-4 दिनों से जागा हुआ है उसकी देखभाल करते करते, और नींद लग गई, और नींद में देखा कि उसका इससे भी बहुत बड़ा राज्य है और वहां उसके 12 बच्चे है, और बहुत ही खुश हो रहा है, उसके बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, और अचानक उसकी पत्नी उसको उठाती है कि अरे उठो बच्चा मर गया, जो रियल बच्चा है। तो वो उठ के देखता है, अरे बच्चा तो मर गया, पर उसके आंखों में कोई आंसू नहीं, जबकि उसका इतना मोह होता है अपने बच्चे में। तो उसकी पत्नी कहती है क्यों अब तुमने रो रहे हो? बोलते अब मैं किसके लिए रोऊं, एक तरफ तो 12 वो गए उनके लिए रोऊं कि ये गए जो गया इसके लिए रोऊं, किसके लिए रोऊं, सत्य ये है या सत्य वो है? इधर तो ये छोटा राज्य है, उधर बड़ा राज्य था, बड़ा राज्य क्या इसके लिए रोऊं कि ये छोटा राज्य है इसके लिए रोऊं? सत्य क्या है, ये सत्य कि वो सत्य? ये सत्य हो सकता है, वो भी सत्य हो सकता है। हो सकता है कि वो स्वप्न ही सत्य है और ये जो जगत है ये मिथ्या है, और ये मैं स्वप्न देख रहा हूं, और हो सत्य वास्तव में वो, कौन इसका निर्णय कौन करेगा कि स्वप्न क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है? तो माया को समझना, भगवान को पहचानना, ये कोटों में कोई और कोई में कोई कर सकता है ये काम, कोटों में कोई और कोई में कोई, और माया को पहचानना कौन कर सकता है? वो जो कोई में कोई है, वो जो कोई में कोई है, उसमें भी कोई में कोई में कोई में कोई, क्योंकि भगवान को पहचान लेना ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ा मुश्किल काम है, परंतु माया को पहचानना उससे कई कई गुना मुश्किल काम है। ये सुना ना जोगिन के, क्या कहा उसने, जोगिन को माया जो आती है वो कैसी आती है? जोगी के जोगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मीरत मूरत हुई बैठी, तीरथ हूं में पानी, माया महाठगनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए डोले, बोले मधुर बानी। तो ऐसी ये माया है, माया बोलती है, जैसे कि एक स्त्री है महाठगनी जो है और वो ऐसी वाणी बोलती है, बाबा ने भी तो एक ऐसे तीन पात्र खड़े करके रखे जो कि है ही नहीं, जो निराकार है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक तो माया, माया माया ने तुमको ये कर दिया, माया ने तुम्हारा मुंह काला कर दिया, माया ने ऐसा कर दिया, माया ने वैसा कर दिया। माया कौन है? माया कोई है ही नहीं, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, क्या है? रावण कोई पुरुष है? रावण ने तुम्हारा ये कर दिया, तुम्हारा राज छीन लिया, जैसे एक व्यक्ति, जैसे दिखाया कोई एक है, एक व्यक्ति जो आया और तुम्हारा राज छीन के चला गया। अब मैं आया हूं तुम्हें राज देने के लिए, मतलब उसने छीना था, अब मैं दे रहा हूं। एक नया व्यक्ति, एक काल्पनिक क्रिएचर खड़ा किया है, माया, माया कहो, और दोनों रूप में किया है, स्त्रीलिंग खड़ा कर दिया और पुल्लिंग भी खड़ा कर दिया, एक रावण कहा एक माया कहा, एक ये दूसरा ड्रामा। ड्रामा कौन है? ड्रामा कुछ है ही नहीं, ड्रामा निराकार। क्या है ड्रामा? वो बाबा ने अपनी खुद के लिए भी, सेफ्टी के लिए, मैं भी ड्रामा, ज्यादा प्रश्न पूछेंगे तो बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में हूं, मैं ड्रामा के बंधन में, मुझे भी आना पड़ता है, मैं बंधायमान हूं, मेरा पार्ट है इसके लिए, मैं ड्रामा के बंधन में। तीसरा खड़ा किया है, तीसरी कौन सी निराकार वस्तु खड़े की है? कुदरत, ये कुदरत है, कुछ भी कहा तो ये कुदरत है। ये कैसे होता है? कुदरत है। ये कैसे होता है? कुदरत है। तो ऐसे तीन निराकार चीजें खड़ी की है। शंकर शंकर कोई है ही नहीं, नॉन एंटिटी। शंकर आप हो, शंकर ब्रह्मा है, शंकर हमारा तपस्वी रूप है, वो तो भक्ति मार्ग में खड़ा किया है शंकर। तो एक तो कहा माया के ये सारे अलग अलग परिभाषा जो बाबा ने दी है, फिर दूसरा है माया के अधीन होना अर्थात क्या, कहा ना ये सारी निशानियां सुनाई उन आत्माओं की, एक मुरली, ये जो मुरली है, ये मुरली में दो आत्माओं की निशानियां सुनाई है, पूरी पूरा मुरली। हाँ, माया के अधीन होना अर्थात जितनी बातें सुनाई उनके अधीन होना, सबसे पहले देहभान में जब जब हम है तब माया के अधीन है, दूसरा विकारों में जब है तब तब माया के अधीन, विकार विकार के अंश अंश सहित, तीसरा जब कमजोरी है, करना चाहते पर हो नहीं रहा है तो माया के अधीन है, अगला जो कोई ना कोई आदतें है, संस्कार चल रहे हैं, कोई एडिक्शन है, एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज का एडिक्शन, हमें डिसाइड करना है कि ये मेरा एडिक्शन हो चुका है, कुछ भी हो सकता है, ये लत बन चुकी है, और अज्ञान, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अनरियल है उसको ही रियल समझ बैठे, है नहीं पर हमको लग रहा है, भ्रम हो रहा है हमको, किसी को लगता है ना कि एक व्यक्ति है जो सोचता है ये दूसरा व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करता है, पर ये उसका भ्रम है, दूसरे व्यक्ति को उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, दूसरे व्यक्ति को ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, सारा इधर हलचल हो रही है फीलिंग्स भावना इमोशंस की, उधर कुछ भी नहीं है, तो ये भी एक भ्रम है। तो भ्रम के अधीन होना अर्थात माया के अधीन, अज्ञान में रहना अर्थात माया के अधीन, विस्मृति में रहना ये भी माया के अधीन, ये फिर उसके अलग अलग इंटरनल बातें है। विस्मृत भूले हुए रहना, पता नहीं वो माया के अधीन था। तो माया को समझना है, व्हाट इज माया, मेरे जीवन में माया क्या है, रावण कौन है, कमजोरी कौन सी है, देहभान की कौन सी बातें चल रही है, ये सब चिंतनीय विषय है। ठीक है, तो इसको आज यहीं पूरा करते हैं। ओम शांति।